नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का स्वास्थ्य ढांचा और मजबूत हुआ है। सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैकड़ों जिलों में नए नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति केवल चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये बजट का आधार और सरकार की प्रतिबद्धता है। देखभाल अर्थव्यवस्था के उदय पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केयर गिवर्स की बढ़ती वैश्विक मांग देश के लाखों युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है।
एक अहम विषय जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है केयर इकोनॉमी। आने वाले दशक में देश में सीनियर सिटीजन्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में केयर गिवर्स की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नई स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने एक सशक्त अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया, जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। लोकसभा की कार्यवाही पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बयान दिया। उनका बयान शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने उनसे सदन में तख्तियां न दिखाने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के भीतर विपक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव के संबंध में नोटिस दिया गया था और ये आज की कार्यसूची में चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भ्रमित है और आज अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। पीठासीन अधिकारी के अनुरोध के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारत ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर बल दिया है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें 4 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड 16% से अधिक बढ़कर $107 और 59 सेंट प्रति बैरल पर पहुंच गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 2.3% की गिरावट दर्ज की गई। नेपाल में प्रथम पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 3 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है और 162 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 124 सीटों पर जीत हासिल की है। नेपाली कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं। यूएमएल ने 8 सीटें, एनसीपी ने 7 सीटें, आरपीपी ने 1 सीट, श्रम संस्कृति पार्टी ने 3 सीट और एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। हैदराबाद में एफआईएच विश्व कप महिला हॉकी क्वालिफायर के पूल बी के दूसरे मैच में आज भारत का सामना शाम 7:30 बजे स्कॉटलैंड से होगा। हैदराबाद में होने वाला ये टूर्नामेंट महिला हॉकी विश्व कप के 2 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से पहला है। दूसरा टूर्नामेंट चिली के सेंटियागो में चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।